نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 23 پارے کا تیسرا ربع دیکھیں گے. ہم نے دو آیات آگے کر لی تھی کیونکہ ہمارا مضمون پورا ہو رہا تھا، تو لہذا سورۃ صافات کی آیت نمبر 149 سے دیکھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کیا یہ بات ان کے دل کو لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. دیکھیے کتنا زبردست انداز ہے. ظاہر اس سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ آئے کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی بیٹیاں قرار دی ہیں تو اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ تم بیٹے کیوں نہیں میرے کر رہے. حالانکہ سورۃ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیچھے اس پہ بھی بات آئی تھی کہ کیا تم رحمان کے لیے بیٹے پیدا کرنے کی بات کرتے ہو، اس بات سے تو آسمان گر پڑے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں اور بیٹیوں کی بانٹ سے بالکل پاک ہے. اس نے جب خود کسی چیز کو پیدا کر لیا تو اس کے لیے کیسی بات رہے گی. ایسی باتیں کر کے لوگ اصل میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے اس حصے میں عمل یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں مذاق میں بھی کوئی بات کہتے ہوئے، ہنسی میں، کھیل میں، کیئر لیسلی بات کرتے ہوئے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ذات بہت بڑی ہے. اور ایسی باتیں لوگوں کی کم علمی اور نہ سمجھی کی دلیل ہیں کہ خود تو آپس میں ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہی تھے لیکن اللہ پہ بھی آگے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. پہلے تو جو کی تھی صرف بات گستاخی وہ کی، لیکن اس سے بڑھ کے کیا کیا، انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے. نعوذ باللہ، کہتے تھے کہ جنوں کے ساتھ اللہ کا ملاپ ہوا اور اس کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے. حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جرت بڑھ جاتی ہے. پہلے انسان ایک بات کرتا ہے، پھر کہانی پوری کرنے کے لیے، اس کو ڈرامائی رنگ دینے کے لیے اگلی بات پہ آ جاتا ہے. پھر دوسری بات یہاں پہ ایک اور پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کی عادت اٹکل پچھو لگانا ہوتی ہے، جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے بارے میں بھی خوب باتیں کرتے ہیں. پھر اگلی بات اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ فرشتے تو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے کاموں کا ان کو پتہ ہے، ان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہے. ہمیں بھی اپنے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک ایسا فرشتہ جس سے حساب کتاب بھی نہیں ہے، اگر اس کو اپنی ذمہ داریاں پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، تو کیا حضرت انسان کو نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ کیا انسان بے مقصد بیکار زندگی بسر کر دے، ساری زندگی پوچھتا ہی رہ جائے کہ پتہ نہیں کرنا کیا تھا اور مجھے کرنا کیا ہے؟ تو لہٰذا انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے، کیا مجھے اپنی تخلیق کا مقصد پتہ ہے؟ ہاں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقصد انسانیت عبادت ہے. لکھ لے یہ جملہ، انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، لیکن مقصد مسلمین یعنی اسلام امت محمدیہ کا مقصد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ انسانیت کو رب سے جوڑنا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دونوں مقاصد جو ہیں وہ ہمیشہ سامنے رہے ہمارے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. یہ لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، اور ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ پس نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ یہاں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی، اور وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جب ان کے پاس کتاب نہیں تھی تو یہود اور نصارہ کو دیکھ کر کہتے تھے کبھی ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آئے، کوئی ہمارے پاس بھی نبی آئے، لیکن آ گیا تو لوگوں نے کیا کیا، وہ سب سیرہ سے مل سکتا ہے۔ سورۃ فاطر کی آیت 42 میں بھی یہی بات گزر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے نبی کا ساتھ دو نہ دو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لشکر ہے، اور یاد رکھیے یہ اللہ کے لشکروں سے مراد اہل ایمان ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے، جو اس کا ساتھ دے، اور اس سے مراد وہ غیبی طاقتیں بھی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ حق والوں کی مدد کرتا ہے۔ یا جو اللہ نے غلبے کی بات کی ہے نا، تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی سیاسی غلبہ نہیں ہے، یا اس سے مراد کوئی دنیا میں کسی نبی کو بادشاہ بنا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہر زمانے میں اللہ کے ہر نبی اور اس کے ماننے والوں کو سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کا مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسا اخلاقی غلبہ دے دیتا ہے، ان کا اخلاق اتنا خوبصورت ہوتا ہے، لوگ ان کو دیکھ کے مان جاتے ہیں کہ یہ حق والے ہیں، یہ ہیں دین سیکھے ہوئے لوگ، ان کا اخلاق سب سے پیارا، یہ جھوٹ نہیں بولتے، چگلیاں نہیں کرتے، دھوکے نہیں دیتے۔ اسی طرح دلائل کا غلبہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کی مدد کر دیتا ہے کہ ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے۔ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ جب اخلاص ہوتا ہے ساتھیوں میں تو سالوں کا سفر مہینوں میں طے ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہے، شرط کہہ کہ ہمارا اخلاق اور ہمارے معاملات اور ہمارا اخلاص اور ہماری عبادات اور ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق اتنے اعلیٰ درجے کے ہوں کہ آج فرشتے نہ بھی نازل ہوتے ہوئے دکھے، لیکن اللہ وہ کام کروا لے گا جو آج ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ضرورت وہی ہے کہ ایک انسان اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو، اس لیے اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کا اندازہ کرواتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جن کو ڈرایا جا چکا ہے، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے، پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے کہ پکڑ کی بات ہو گئی، وقت آئے گا لگ پتا جائے گا، کچھ زیادہ دن نہیں رہ گئے کہ یہ لوگ اپنی شکست اور تمہاری فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور جب یہ ہوگا تو لگ بتا جائے گا، اور ان آیات کے نازل ہونے کے بمشکل 14-15 سال کے بعد کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا فاتحانہ طور پر اپنے شہر میں داخل ہونا دیکھا، اور پھر چند سالوں بعد انہی لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسلام نہ صرف عرب پر بلکہ روم اور ایران جیسی عظیم سلطنتوں پر غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کریں، اپنی کمٹمنٹس نبھائیں، ہم اللہ کے دین کو اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ اوپر لے جائیں، پھر دیکھیں اللہ ہمیں کیسے غلبے دیتا ہے۔ اگر اللہ کے دین کو مشن بنایا ہے تو پھر انشاءاللہ جمے رہیے، اور اگر آپ نے وقت گزاری اور ثواب اور برکت کا حصول بنایا ہے تو پھر بہت زیادہ امیدیں نہ رکھیں، کیونکہ انسان ثواب کمانے کے اور کئی ذرائع بھی لے آتا ہے۔ اللہ کے دین کی خدمت صرف وہی گروہ کرتا ہے جس نے اس کو مشن بنایا، پھر وہ لینے اور دینے کی نہیں، وہ نفع اور نقصان کی باتیں نہیں کرتا، بس اس کا ایک ہی جوش، اس کو ایک جنون طاری ہو جاتا ہے کہ میں نے زندگی کے آخری لمحے تک اس پہ جانا ہے۔ بہت ضرورت ہے ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں پڑھنے کی، سننے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ جوش تھے اور وہ کیا جذبے تھے۔ ایک بازو کٹتا ہے تو دوسرا بازو میں جھنڈا پکڑ لیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو دونوں کوہنیوں میں ٹنڈوں کے ساتھ جس کو کہتے ہیں لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑ لیا، اس کو نہیں گرنے دیا، اور جب آخری حربہ کر کے دشمن نے گرایا پھر اس کے بعد دوسرے ساتھی نے آگے بڑھ کے جھنڈا پکڑا۔ 3,000 کا لشکر، مٹھی بھر، 2,00,000 کا دشمن، اللہ اکبر، جدید اسلحے سے لیس اس دور کا رومن عیسائی بادشاہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے، اللہ کیسے لوگوں سے غلبے دلاتا ہے۔ اللہ ہم ان کے عشر عشیر پہ بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر ایمان دے، ہمیں اخلاص دے، ہمیں تیرے دین کے لیے قربانیاں کرنے والا سکھا۔ اب تو ہمارے دماغ میں صرف ایک لفظ ہے، میں نے آج کیا قربان کرنا ہے، آج میں نے دین کو کیا دینا ہے، آج میں نے دین کے لیے کیا کرنا ہے، قربانی قربانی، اور اس طرح سے چل پڑے. ایک ایسے حالات آ گئے, ایک ایسا وقت آیا غزوہ موتہ میں کہ پہنچنے کا بتائیں, یہ تو سراسر خودکشی ہے. ادھر 2 لاکھ, ادھر 3 ہزار, کیا کریں؟ سوچ میں پڑ گئے. 2 دن تک مان کے مقام پر ایک میٹنگ ہوتی رہی. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کو خط لکھ کے بھیجتے ہیں, کیا کریں, کیونکہ آپ نے بھیجا تو اس وقت تو امید بھی نہیں تھی کہ اتنی بڑی جنگ ہو جائے گی. لیکن لیڈر بڑے ہوتے ہیں نا, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ ایسے موقع پہ ایسے سیسا پلائی دیوار بن گئے. کہا لوگو کیا بات کرتے ہو, یہ تمہیں وہ چیز دکھ رہی ہے جس کے لیے گھر سے نکلے, اور وہ ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن. آؤ آج ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ کٹ جاؤ. ایک نے شعر پڑھے اس وقت میں کہ وہ جنت مجھ کو پکار رہی ہے, اس کی حوریں اور اس کے باغات مجھے دکھ رہے ہیں, تو میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ کہا خبردار, کوئی خط نہیں جائے گا, کوئی بری خبر نہیں ادھر دینی, ٹوٹ پڑو. اور آپ حیران ہو جائیں گے, جب وہ لڑے پورے 3 ہزار کے لشکر میں سے ٹوٹل 12 لوگ شہادت پہ فائز ہوئے. خالد بن ولید نے ایسے وقت پہ وہ کام کیا کہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ لشکر اسلام اس وقت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں. اور انہوں نے میدان جنگ میں کود کر اس طرح کی اسٹریٹجی رکھی کہ مسلمانوں کی نشستیں بدل دی, پچھلوں کو آگے, اگلوں کو پیچھے, دائیں کو بائیں, بائیں کو آگے دائیں کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن ڈر گئے کہ ان کے پاس تو اور فوج آ گئی ہے, کل تو یہ لوگ نہیں تھے. اتنا خوف طاری ہوا ان پہ, اور ساتھ ہی انہوں نے پیچھے جانے کی کوشش کی. دشمن اور ڈرا کہ لگتا ہے پیچھے سے کوئی بہت بڑی مدد لے کے آ رہے ہیں, کام کرتے ہوئے پیچھے جا رہے ہیں, پیچھے تھوڑا تھوڑا موو ہو رہے ہیں. دشمن کتنا کو پیچھے ہوتا, خوف آ گیا, دشمن بھاگنے لگے. اس طرح اپنی یہ فوج کو بچا کر مدینہ میں لے آئے, اور دشمن کو مقابلے کی ضرورت ہی نہ ہوئی. صرف 12 لوگ کام آئے, اور ایسی جنگ کہ جس نے مسلمانوں کے لیے آگے عیسائیوں پر حملوں کے دروازے کھول دیے. پڑھا کریں یہ ہسٹری. آج ضرورت ہے اپنے نبی کی سیرت سے اور اپنے صحابہ کے ساتھ باتیں کریں. میں سوچ رہی تھی کہ ربیع الاول میں اتنے پروگرام ہوتے ہیں, لوگ اتنی نعتیں پڑھتے ہیں, کیوں نہیں کبھی کسی نے غزوہ موتا کے حالات پڑھ کے سنائے؟ کیوں نہیں کسی بھی خوبصورت اسپیچ کرنے والے نے لوگوں کو غزوہ احد کی دلداریاں اور اللہ کے نبی کے اوپر جان نثار کرنا سکھایا؟ باتیں کرنا آسان ہے, عمل کرنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ایمان دے دے. آخر میں اب دیکھیں سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون. پوری صورت میں اتنی قوموں پہ تباہی کی بات آئی کہ اللہ نے آخر میں خود ہی سلامتی اتار دی. یہ ہے وہ کلمات جن کو کسی بھی محفل کے اینڈ پہ پڑھا جائے, کسی بھی درس واز کے بعد میں, تو اللہ کے حکم سے پورا اجر بھی مل جاتا ہے اور کمی بیشیوں کی تلافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. سورت سواد, نام دیکھیے, پچھلی سوافات اور یہ سواد, یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. پیچھے ہم یاسین سورت بھی پڑھ چکے, اور یہ مختصر ترین مجموعہ ہے کہ صرف ایک لفظ کے ساتھ سورت کا نام ہے. یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی, جبکہ اعلانیہ دعوت کا آغاز ہو چکا تھا. قریش کے سرداروں میں اس بات پر بے چینی پھیل گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کدھر سے آ گئے, ان کو کیا ہو گیا, یہ ساری دعوتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی دعوت پہ لگ گئے. تقریباً نبوت کا 4th سال آپ کہہ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد ہے, اور بعض کہتے ہیں ہجرت حبشہ کے بعد ایمان چونکہ وہ لائے تھے, تو یہ آخر میں. بہرحال واقعات جو ہے وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ کچھ آیات شروع کی ہوتی ہیں تو کچھ 10ویں 11ویں سال کی بھی ہو سکتی ہیں. اس سورت کی پہلی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ جو سیرت کا ہم پہلے بہت دفعہ سن چکے ہیں, اس کا یہاں بالکل صحیح مقام آ گیا. مسند احمد اور نسائی اور کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب ان کا یہ آخری وقت آ گیا ہے. بس انہوں نے مشورہ کیا کہ جا کر ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا معاملہ جو یہ صاف کرے, ایسا نہ ہو کہ یہ تو فوت ہو جائے اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ ہو جائے, اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دے کہ جب تک چچا زندہ تھا انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اب یہ مرنے لگے تو چل پڑے. یاد رکھیے کہ اس طرح کی کوششیں ابو طالب کی ابتدائی دور میں بھی کر چکے تھے, جبکہ ابھی آپ کے نبوت کا میسج بالکل شروع شروع میں تھا. بہرحال 25 سردار جو تھے, جن میں بڑے بڑے سردار تھے, ابو جہل, ابو سفیان, امیہ بن خلف, عاص بن وائل ٹائپ, یہ سب جمع ہوئے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکایات کا بٹارہ کھول دیا. پھر کہا کہ ہم تو آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کر رہے ہیں, آپ کا بھتیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے, ہم اس کو اس کے دین پہ چھوڑ دیں گے, تم ہمیں کچھ نہ کو, مائنڈ یور بزنس اور ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, اس قسم کی آفر تھی. وہ جس کی عبادت کرنا چاہے شوق سے کرے اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے بس, اور اگر وہ یہ کہے گا کہ ہم اس کے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے फिर हम नहीं मानेंगे। अगर ये शर्तें मानते हैं तो हम सुलह करेंगे। बहरहाल बड़ी आज के दौर में एक पीस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मल्टी रिलीजन और सारे लोगों को खुश रखने का एक बहुत ही मसालेखाना किस्म का मसलियतों से भरा हुआ एक मैसेज था। अबू तालिब ने कहा कि ठीक है मैं बात करूंगा। जब वो लोग चले गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया कि कुरैश के सरदार आज ये कह के गए। उस वक्त फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चचा मैं तो आपके सामने एक ऐसा कलमा पेश करता हूँ कि जिसे अगर ये मान ले तो अरब अजम भी इनके आगे झुकने लगेंगे। और बास कहते हैं कि इनकी मौजूदगी में ये बात हुई थी, ये असल में मैंने सीरत पढ़ाई है, तो ये वाकया बिल्कुल उसी दौर का है जब मुसलमानों को समझौते और सौदेबाजियों पे ये लोग ले आए थे और कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए थे। बहरहाल जब अल्लाह के नबी ने इन लोगों को जमा किया और अपना मैसेज दिया, पहले तो ये लोग बहुत परेशान हुए कि ये क्या बात है, कौन सी बात है कि सिर्फ एक कलमा ऐसा हम पढ़ेंगे कि हम दुनिया के बादशाह हो जाएंगे। कहने लगे एक नहीं 10 कलमे बताओ, हम इनको मानने को तैयार है। उस पे आपने फरमाया कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाह को एक मान लो तुम फला पाओगे। इस पे ये बातें करते हुए उठे और वो बातें की जो कि अब सूरत के शुरू में हम पढ़ने लगे हैं। तो बहरहाल आप देखिए कि किस तरह से लोग अल्लाह के नबियों को सताते हैं। फिर एक और चीज इस सूरत में जो हमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगी और वो क्या है कि सूरत के इब्तदाई हिस्से में कुफार को उनकी बातों पर डराया गया, उनके साथ बात की गई, और बाद में 9 नबियों का जिक्र मुसलसल है। हजरत दाऊद और सुलेमान का किस्सा इधर बहुत तफसील से भी आएगा और इसमें दिखाया जा रहा है मक्का वालों को कि देखो तुम्हारे पास जो नबी आया ये कोई पहली बात नहीं है, पहले भी ऐसे नबी आए लेकिन अल्लाह ने उनको गलबा दिया, और अगर तुमने ना माना तो पकड़े जाओगे। और आखिर में हम देखेंगे कि आदम और इबलीस का किस्सा है कि जिसके अंदर तकबर की बात करके मक्का वालों को बता दिया कि ये तकबर है जो तुम्हें आज अल्लाह के नबी के सामने अपनी बात को पीछे करने नहीं देता, तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो इबलीस का होगा। आइए सूरत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सात वल कुरआनि ज़िक्र बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। सात कसम है नसीहत भरे कुरान की, कितनी प्यारी कसम है। देखिए कुरान पाक क्या है, नसीहत भरा हुआ कुरान है। बल्कि यही लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया है सख्त तकब्बुर और जिद में मुब्तला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इस जिद का बुरा करे कि जो लोगों को उनकी खैर की चीज भी नहीं लेने देती, और अल्लाह इस नसीहत भरे कुरान से हमें नसीहत लेने वाला बना दे। इनसे पहले हम ऐसी कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं और जब इनकी शामत आई है तो वो चीख उठे हैं मगर वो वक्त बचने का नहीं होता। अल्लाह अकबर। इन लोगों को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक डराने वाला खुद इन्हीं में से आ गया। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ कुरान के जिक्र होने की बात की। शर्फ वाला बुजुर्ग कुरान, नसीहत से भरा हुआ, भूला हुआ सबक याद दिलाने वाला, गफलत से चुकाने वाला कुरान। क्या हम महसूस करते हैं कुरान की इस खूबी को? बिल्कुल करते हैं। जब भी कोई बंदा अपने दिल को तासुब से पाक करके इस कुरान को सुनेगा ना तो उसको यकीनन इस बात से फायदा होगा कि हकीकत में ये सच है। दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ फी इज्जत व शिकाक की बात हुई। ये इज्जा क्या है जिसको आज अना कहते हैं, ईगो कहते हैं। याद रखिए बहुत सारे लोग कुरान पढ़ने को तैयार हैं, बहुत सारे लोग इसके साथ जिंदगियां लगाने को तैयार है जो खुशी इसमें मिलती है उसकी वजह से, लेकिन रास्ते में अना आती है। और ये कुरान जब हम पढ़ते हैं ना इसकी सबसे पहली चोट हमारी अना पे पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है, ऐसे अना दबती है जैसे आप माल्टे को निचोड़ते जाए और उसका रस निकलता जाएगा। और एक वक्त आता है कि फिर इंसान बिल्कुल अपनी अना और ईगो से पाक हो जाता है। किसने क्या कहा, किसने मुझे क्या समझा, कोई मुझे क्या समझता है, अल्लाह की मर्जी छोड़ो मेरी बला से, मैं हूं क्या जो लोग मुझे समझते हैं, जो भी समझते हैं कुछ अच्छा ही समझते हैं, मैं तो इससे भी बुरा हूं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आपके अंदर से अना निकल जाती है ना बिल्कुल ऐसे लगता है कि बगैर हड्डी के गोश्त, इधर मोड़ो उधर मोड़ो, काटो छीलो तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो, लेकिन इंसान कहता कि नहीं मैंने अपनी जगह से नहीं हटना, इसलिए कि मैंने जो कल अपना हाल देखना है वो आज ही देख लूं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें शैतान की तरह ना परस्त ना बनाए। वकाल अल काफिरून, और काफिर कहने लगे। अब जरा देखिए एक और कॉल इनका, एक बात से हटते थे तो दूसरी बात कहने शुरू हो जाते थे। और क्या कहते हैं, हाज साहिर कसाब, ये साहिर है सख्त झूठा है, क्या इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला? यहाँ वो उनकी दावत को सोचिएगा जो अल्लाह के नबी के रिश्तेदार बैठे थे और आपकी बात सुन के क्या कह रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। और सरदाराने कौम ये कहते हुए निकल गए कि चलो और डटे रहो अपने माबूदों की इबादत पर। ये बात तो किसी और ही गरज से कही जा रही है। देखिए दिल के तासु, डटे रहो यानी नहीं, हमने नहीं इनकी माननी, वहां भी बन जाओगे तुम, इनकी बातों पे आओगे तो तौर तरीके छूट जाएंगे। और ये जो बात है ना, ये बात तो किसी और ही गरज से कही जा रही, इसमें क्या छुपा हुआ है? इल्जाम नहीं, इनका कोई जाती फायदा है, ये इनको शौक है बड़ा बनने का, ये इनको शादी करनी है मक्के की बड़ी खूबसूरत औरत से, और इनको दौलत चाहिए और इनको सरदारी चाहिए, ये कोई और ही अंदर कोई बातें और होती है, ऊपर दीन दीन का ढकोसला है, ये अंदाज था। ये बात हमने जमाने करीब की मिल्लत में किसी से नहीं सुनी, ये कुछ नहीं मगर एक मन घड़त बात है। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल कर दिया जाए? आप देखिए कि जो दिलों में होता है ना वो जुबान पे आ ही जाता है। अल्लाह के नबी को साहिर क्यों कहते थे? क्योंकि उनको ये पता था कि जो बंदा इनकी दावत पे चलता है वो दीवाना हो जाता है, जुनून लाहक हो जाता है, किसी ताल्लुक के कट जाने, किसी नुकसान के पहुंचने की वो परवाह नहीं करता। बाप को बेटा, बेटे को बाप छोड़ता है, बीवी शोहर को, शोहर बीवी से जुदा हो जाता है, इनको बुरा नहीं लगता। हिजरत की नौबत आ जाए, दामन झाड़कर अपने मुल्क से निकल पड़ते हैं, कारोबार बैठता है, सारी बिरादरी बायकॉट करती है, इसको भी गवारा कर लेते हैं। और तो और जितनी जिस्मानी अजियत इनको दे दो उससे भी अपने आप को पीछे नहीं करता। ये क्या जुनून है? अल्लाह ताला कहते हैं इनको कह दो ये वो जुनून है जो अल्लाह सबको दे दे। देखिए आपको जब एक धुन सवार होती है ना काम करते हुए, तो कट भी लग जाए उंगली पे तो आपको परवाह नहीं होती, रात को बैठेंगे तो याद आएगा अरे यहाँ सुबह कट लगा था। जिसको जन्नत दिखे और जिसको जहन्नुम दिखे उसको कहाँ परवाह होगी इन छोटी छोटी कुर्बानियों की जो अल्लाह का दीन हमसे लेता है। और वल्लाही अभी तो हमारे दीन ने हमसे कुछ मांगा ही नहीं, और अल्लाह ना करे वो वक्त हमारी जिंदगियों में आए कि गज़वे मुता की तरह हमें अपने हाथ कटवाने पड़े और अपनी जानें देनी पड़े। बल हुम फी शक के मिन जिक्री, असल बात यह है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, असल बात यह है कि ये मेरे जिक्र पर शक कर रहे हैं। शक दुश्मन है कोशिशों का। आप अल्लाह के रास्ते में दिन रात एक लगे रहेंगे, शर्त एक है कि आपके दिल में शक ना हो। जिस दिन आपके दिल में शक आएगा ना इस दावत से, अगले दिन उठना भी मुश्किल हो जाएगा, एक रुपया देना भी आपको मुश्किल लगेगा, काम करना तो दूर की बात है। अल्लाह कहते हैं असल बात है कि ये शक करते हैं, और ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे अजाब का मजा चखा नहीं है। क्या तेरे देने वाले और गालिब परवरदिगार की रहमत के खजाने इनके कब्जे में है? क्या ये आसमानों जमीन और इनके दरमियान की चीजों के मालिक हैं? अच्छा तो ये आलम असबाब की बुलंदियों पर चढ़कर देख ले। शऊर बेदार करने वाला मामला है। ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है यानी गिरोह, जो इसी जगह शिकस्त खाने वाला है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेघों वाले फिरौन और समूद और कौमे लूत और रेका वाले झुटला चुके जत्थे वो थे जिनमें से हर एक ने रसूलों को झुटलाया, और मेरी अकूबत का फैसला इन पर चिस्मा होकर रह गया। ये लोग भी बस एक धमाके के मुंतजर हैं जिसके बाद कोई दूसरा धमाका ना होगा। आपको अभी तक की सूरतों में कोई फर्क नहीं दिखा होगा। क्यामत, मुमारी, रसूलों का झुटलाना, बात वो हबीब से शुरू हुई थी और यहां तक पहुंच के देखिए मक्का वालों का मौका बनाकर ये बात समझा दी गई कि जिसके दिल में अपने आप को कुछ समझने का एहसास होगा वो कभी हिदायत नहीं पाएगा चाहे वक्त का नबी उनके सामने आकर खड़ा हो जाए। वकालू रब्बना जिल्लना कित्तना ये कबल यौमिल हिसाब, और ये कहते हैं हमारे रब यौम हिसाब से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी से दे दे, यानी जो अजाब आना है अभी आ जाए। ऐ नबी सब्र करो इन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं, और इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुव्वतों के मालिक थे, हर मामले में अल्लाह की तरफ रजू करने वाले थे। इसको हाईलाइट करें, इन्नहु अवाब। कौन सी चीज है जो अल्लाह को सबसे अहम बनाती है हमारी जिंदगी में? अवाब होना, पलट पलट कर अल्लाह की तरफ तवज्जो जाए। याद रखिए बड़े काम करने के लिए ज्यादा अवाब होने की जरूरत होती है, बार बार फैसले करने पड़ते हैं, बार बार इस्तखारे, बार बार मशवरे, क्या करूं क्या ना करूं। अवाब, सर को अल्लाह के आगे झुका दीजिए और ये कह दीजिए कि अल्लाह तू मेरे से सही काम ले ले। आप देखिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपने वक्त के नबी भी थे और बादशाह भी थे, लेकिन अवाब होने की सिफत ने उनको इतना फायदा दिया
कि जिंदगी में जब कोई दोराहा आया, उन्होंने रब से पूछा और रब ने फिर उनको गाइड भी किया। हमने पहाड़ों को इनके साथ मुसख़र कर रखा था कि सुबह शाम वो इनके साथ तस्बीह करते थे, परिंदे सिमट आते, सब के सब उसकी तस्बीह की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। अवाब की जुबान से जो बात निकलेगी लोग जरूर मुतवज्जे होंगे। और हजरत दाऊद को अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज दी थी, जब वो जबूर की तिलावत करते तो इर्द गिर्द से उड़ते हुए परिंदे भी उनके पास आ जाते। हमने उनकी सल्तनत मजबूत कर दी, उनको हिकमत अता की, अल्लाह हमें भी अता कर दे, और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी। इसको हाईलाइट करें, फैसला कुन तबलीग होनी चाहिए, आपकी बात सुनकर सुनने वाला और कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, ये भी ठीक तो वो भी ठीक, कुछ ये कहते कुछ वो कहते, ये भी कर लो, नहीं, सीधी बात, कुल कौलन सदीदा, और सीधी बात ये कि वह माली अला अबुदुल लजी फतरनी। जब अल्लाह का हक जिंदगी में बंदा महसूस करता है ना, उसके बाद बात सीधी करने की तौफीक मिलती है। और बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जिनको सीधी बात कहने वाला कोई मिल गया, वरना लोगों ने तो आज बातों में उलझा कर इंसानियत को अल्लाह से भी बदगुमान कर दिया और रसूल से तो पहले से ही थे। फरमाया, फिर तुम्हें कुछ खबर पहुंची हो उन मुकदमे वालों की जो दीवार चढ़कर उनके बाला खाने में घुस आए थे? जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो इन्हें देख कर घबरा गए। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम तो फरीक के मुकदमा हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की। ये डरे क्यों? अचानक घर में आप बैठे अपने कंप्यूटर डेस्क पे काम करें और एकदम दीवार से कोई फलांग के अंदर आ जाए, डरेंगे नहीं? इससे पता चलता है कि नबी गैब नहीं जानते थे, कि आने वाले इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी ना कीजिए और हमें राह रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 यानी 99 दुम्बियां यानी शीप हैं, और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। इसने मुझसे कहा, ये एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे। इसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया। और वाक्या ये है, इसको हाईलाइट कीजिए, असल अमल की बात ये है। वइन्न कसीरा मिनल खुलता इला यबगी बादुहुम अला बादिन इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात। वाक्या ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग, सोचे फिर पढ़े, मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियां करते रहते हैं। बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते और अमल सालेह करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे लोग कलीलुम माहुम, ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। और ये इतनी बड़ी हकीकत है कि जिसका इदराक वही कर सकता है जो किसी के साथ मिलजुल कर रहता हो। याद रखिए, इंसानों की इस दुनिया में मेरा आपका एक इम्तिहान है। किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा। किसी को कोई ऐसी खूबी मिल जाती है जो दूसरों की नजरों में आ जाती है, किसी को ऐसी मिल जाती है जो नहीं नजर आती। सूरत के शुरू में इज्जत व शिकाक की बात करके बता दिया कि जो अनापरस्त नहीं होगा, सेल्फ राइटियसनेस का उसके अंदर जज्बा नहीं होगा, अपनी जात को नुमाया करने का जज्बा नहीं होगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाड़ी चलती रहे, चाहे अंदर बोनट में लगा हुआ एक तार हो जो इंजन को बैटरी से मिलाता हो, बस मुझे इतना पता है कि मैं नहीं रहूंगा अपनी जगह पे तो गाड़ी रुक जाएगी। उसको फ्रंट पे स्टेयरिंग हाथ में पकड़ के बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर बैठना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट ऑपोजिट शख्स फिर ज्यादतियां करता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ज्यादतियों से बचाए। आप देखिए कि शराकत कारोबार में भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंसान दो लोगों के बीच में आता है तो मसला आता है। मसला आप देखिए कि एक डिश है, 10 कबाब किसी ने आपके सामने रखे, क्योंकि खाने वाले 8 थे, दो उन्होंने एक्स्ट्रा रख दिए, कोई आ भी सकता है, और आपको बारी मिल गई, लाइन में पहले लग गए, तो आपने तो 4 कबाब पहली प्लेट में डाल लिए कि आज तो सिर्फ कबाब ही खाऊंगी। ये है अक्सर शरीक एक दूसरे पे ज्यादती करते हैं। अकल और समझ अल्लाह ने दी हुई है, घर वाले ने क्या चीज किसके लिए कितनी रखी है। ये हमारा दीन हमें छोटी छोटी चीजों पर टोकता है ताकि हम क्यामत के दिन उस बुरे मामले से बच जाए। फिर वापिस कहा, ये बात कहते कहते दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये तो इसने दरअसल एक आजमाइश की है। चुनाच उन्होंने अपने रब से माफी मांगी और सजदे में गिर गए और रुजू कर लिया। पीछे क्या था? अवाब, यहां क्या है? अनाब। ये बहुत ही खूबसूरत एक अमल है। आप देखिए कि दूसरों के हालात से अपने लिए नसीहत लेना इसको हिदायत बयानी कहते हैं। एक गाइडेंस वो है जो आप और मैं कुरान पढ़ के लेते हैं, और हिदायत की 10 किस्में मैंने पिछले सालों में लिखाई थी, आज सिर्फ अल हुदल बयानी को समझ लें। आप कहीं जाते हैं, कोई बात होती है, एक दिन अगला बंदा वो आपसे सवाल करता है, चले आपको नहीं समझ आएगी मैं अपने ऊपर लेती हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला कहने में भी बुरा लगता है, सुबह मैंने अपने हस्बैंड से झगड़ा किया और जरा सी बदतमीजी कर दी, अल्लाह मुझे कभी तौफीक ना दे, यहां आ गई, आपको तो नहीं पता, पढ़ाना शुरू कर दिया, क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। एक पर्ची आती है और उस पर्ची पे लिखा हुआ है, शौहर के साथ झगड़े की सूरत में बदतमीजी करना कैसा होता है। अब ये सवाल आपके लिए कि मेरे लिए, इसको अल हुदल बयानी कहते हैं। और हदीस में आता है कि अल कय्यसु मम वुइदा बगैरी ही, खुलासा है बात का, अक्लमंद वो है जो दूसरे के हालात से खुद नसीहत ले ले। तो जिंदगी में दिन रात ऐसा होता है, किसी को कोई बात कह के आते हैं वो आपके अपने आगे आ जाती है, यकीन करें ये जो लफ्ज यहां बोल के जाती हूँ ना, ये अगले दिन आने तक बाज गश्त बन के मेरे अपने दिल दिमाग पे गूंजते हैं, फोन में, मैसेजेस में, कई जगह मुझे अपनी कई भी बातें नजर आ रही होती हैं, आज ये कह के आई हूं ना ये होगा, आज ये बड़ी बात कर दी है ना, अब ये आगे आएगी। अल्लाह ने इंसानों की इस दुनिया में हमारे बहुत सारे खामोश उस्ताद रखे हैं, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस मौके पे अल्लाह के आगे झुककर सजदा किया, क्या पता चला कि अपनी कोई गलती दिखे, कोई कमी बेशी हो तो फौरन अल्लाह तआला के आगे झुके, फगफरना लहू ज़ालिक, और हमने उनका कसूर माफ कर दिया, यकीनन हमारे यहाँ उसके तकर्रुब का बहुत आला मुकाम और बेहतर इंजाम है। यानी अल्लाह अपने नबियों के वाकयात यहाँ लाकर हमें बताता है कि उनमें अना नहीं होती थी, ईगो नहीं होती थी, किसी और के वाकये में दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना हाल दिखा। दूसरी बात देखिए, जिसके उस पहले ही 99 है वो एक और लेना चाहता है, इसको कहते हैं 9 और 99 का चक्कर, और जिसके पास एक है कहते हैं उससे भी ये ले लो, ये भी तो ज्यादती, आज के दौर में आप यही चीज यहां देख सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने हक से कम लें और अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा दें, यानी कमिटमेंट कम की हो लेकिन ऑफर ज्यादा करें, इंशाल्लाह दुनिया का निजाम चलता रहेगा। हमने उनसे कहा है, दाऊद हमने आपको जमीन में खलीफा बनाया, बस आप लोगों के दरमियान हक के साथ हुकूमत करें और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करें। हाईलाइट कर लें, ईगो, इज्जत और शिकाक का जो मुहरक होता है ना वो ख्वाहिश होती है, वरना क्या होगा, वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं यकीनन उनके लिए सख्त सजा है कि वो यौमुल हिसाब को भूल गए। अल्लाह हमें यौमुल हिसाब को भूलने से बचा दे। हमने इस जमीन और आसमान को और इस दुनिया को जिनके दरमियान है फजूल पैदा नहीं किया, तख्लीके कायनात का मकसद ये तो इन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफर किया, और ऐसे काफिरों के लिए बर्बादी है जहन्नुम की आग से। क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं और इनको जो जमीन में फसाद करने वाले यकसां कर देंगे, क्या मुत्तकियों को हम फाजिरों जैसा कर दें। ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ऐ नबी हमने आपकी तरफ नाजिल की ताकि ये लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल और फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। क्या पता चला इस आयत से कि ख्वाहिश नफ्स के पीछे भटकने वालों को हमेशा ही नुकसान होता है और वो अल्लाह ताला के आगे झुकते नहीं। दूसरी बात पता चली कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तौबा की और सजदा किया। आज हमारी शरीयत में सलातो शुक्र तो कहीं नहीं है, हाँ जब अल्लाह के नबी को कोई खुशी की खबर पहुंचती तो आप शुक्र में सजदा करते थे। तो आपको मुझे अगर कोई गुड न्यूज मिले तो फिर आप सजदे में जा सकते हैं। हाँ तौबा की नमाज का जिक्र मौजूद है, कभी अपना कोई गुनाह याद आए वजू करें, 2 नफिल पढ़े, रो धो के माफी मांग लें कि अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ कर दे, आज तक भी छुपाया हुआ है तो बाद में भी छुपा दे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके दिल से उस गुनाह का गिल्ट और उसका बोझ भी हटेगा, क्योंकि हम अपने दिलों पर ये बोझ लेकर ज्यादा दिन नहीं चल सकते। बस सब शैतान हमें हमारी पिछली जिंदगी के गुनाह याद कराता है, कहते तेरी क्या बख्शिश होनी है, तूने कहा अच्छा होना है, तू तो इतना कर चुकी वो कर चुकी। नहीं, जब चाहे अल्लाह ताला के सामने झुकिए, अल्लाह सुभान ताला आपके लिए आसान करेगा। और दाऊद चूंकि बाप थे अच्छे थे तो अब अल्लाह ने औलाद भी अच्छी दी, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने सुलेमान जैसा बेटा अता किया, बेहतरीन बंदा नेम अलब्द, जिसको अल्लाह बेहतरीन कहे वो कैसा होगा, कसरत से अपने रब की तरफ रजू करने वाला। बाप क्या था, अब्बाब, तो बेटा क्या निकला, इन्नहु अब्बाब, जैसा बाप वैसा बेटा। काबिले जिक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उनके सामने खूब सधे हुए घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा, मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। यानी आप अपनी माल, अपनी गाड़ी, अपनी चीजों में हर उस चीज से प्यार करें जो आपको अल्लाह का कुर्ब देती है। मसलन इस वक्त क्या चीज है? अपनी गाड़ी से प्यार करें जो आपको यहाँ तक ले आई। तो आज जाके आप भी सुलेमान की तरह गाड़ी पे जरा हाथ फेरिएगा कि थैंक यू माई कार, तुमने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। और वो गाड़ी जो फजर के लिए निकले और वो गाड़ी जो 5 वक्त मस्जिद के लिए निकले, वो उस गाड़ी से बेहतर है जो डैश। बाकी बातें आप खुद ही समझ जाते हैं। हमेशा अपनी चीजों को, अपनी नेमतों को दीन के लिए इस्तेमाल करें तो वो नेमत है। जरूरत है इस बात की कि इन नेमतों को इस्तेमाल करें, इनको खुदा बनाकर पूजने ना लग जाएं और सिर्फ इन्हीं को इधर उधर ना लेकर बैठ जाएं, बल्कि इनको इस्तेमाल करें। यहां तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उन्होंने हुक्म दिया, इन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगे इनकी पिंडलियां और गर्दनों पर हाथ फेरने। और देखो, सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और इसकी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल दिया। फिर उन्होंने रजू किया और कहा है, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार न हो। बेशक तू ही असल दाता है, तू ही असल देने वाला है। तब हमने उनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो इनके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहते थे, और शयातीन को मुसख्खर कर दिया। अपनी एयरलाइन थी हजरत सुलेमान की, अपनी मर्जी से जहाज चलाते, हवा को ऊपर करते नीचे करते, उसकी स्पीड कम करते। है कोई आज दुनिया की कोई एक ताकत भी इतनी खुद कफील? तो उन्होंने ये सब तरक्कियां कब की? जब अल्लाह को छोड़ा। नाराज के नहीं, हमारी अलाबुदुल्लजी। जब मुसलमान हुक्मरान अल्लाह से डरने लग जाएं, वल्ला ही आज भी अल्लाह ऐसे काम कर सकता है। कल तो हवाएं थी, आज तो अल्लाह आपको पूरी दुनिया में घूमने फिरने के मौके दे दे। हम नाफरमानियां करके और अपनी तौहीद को कमजोर करके खुद अपने आप को कमजोर करते हैं। और शैतान को मुसख्खर कर दिया, हर तरह के मेमार और गोताखोर और दूसरे जो जंजीरों में पाबंद थे। हमने उनसे कहा, ये हमारी बख्शिश है, तुझे इख्तियार है, जिसे चाहे दे और जिससे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। कहते हैं कि हजरत सुलेमान को जितनी भी नेमतें मिली थी, क्यामत के दिन उसका हिसाब नहीं होगा। ये इनकी एक खास बात है। आपको मुझे कोई कह दे हाँ जी कोई हिसाब नहीं, फिर देखें हम क्या करते हैं। चीजें तो जमा जो करेंगे, जो उलट पुलट बोलेंगे, किसी बात का हिसाब नहीं। ज्यादतियां करो, जुल्म करो, जो मर्जी करो, मेरा ले सारी दुनिया का जीना धोबर कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें बगैर हिसाब के जन्नत दे दे। यकीनन उसके लिए हमारे यहाँ तकर्रुब का मुकाम और बेहतरीन जाम है। और हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र करो। जब इसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ और अजाब में डाल दिया, हमने उसे हुक्म दिया कि अपना पांव जमीन पर मारो, ये है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। हमने उसे और इसके अहल याल वापस कर दिए और इनके साथ इतने ही अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अक्लो फिक्र रखने वालों के लिए दर्स के तौर पर। और हमने उनसे कहा कि तिनकों का एक मुट्ठा ले लो। मुट्ठा किसको कहते हैं? झाड़ू, यानी एक मुट्ठी में जो तिनके आए, और इससे मार दे। अपनी कसम न तोड़, हमने इसे साबिर पाया, बेहतरीन बंदा, वो अपने रब की तरफ बहुत रजू करने वाला। क्या खूबी आ रही है हर नबी की दर? अवाब। तो दुआ करे अल्लाह में अवाब बनाए। और अवाब ही है जो ये कहता है, वो माली अला अबुदुल्लजी फतरनी। फुकस, झुका हुआ, अंदर से टूटा हुआ शख्स। हजरत अय्यूब का किस्सा आपने यहां भी पढ़ा, पीछे भी पढ़ा था। 18 बरस तक कहते हैं कि बीमार रहे, करीब वाले सब छोड़ गए। जब हम खाते पीते हैं और जवान होते हैं ना, सब हमारे साथ होते हैं, दोस्ती करते हैं, लेकिन जब जिस्म भी काम करना छोड़ दे तो दूसरे भी छोड़ जाते हैं। और जो खलियान थे, गेत थे, वो सब उनके खत्म हो गए, लेकिन साबिर थे। अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया? वो सब कुछ दे दिया जो पहले था, उससे भी ज्यादा दिया। कहते हैं कि इनके खलियान में गंदम उगती थी और ऊपर से एक बादल आया और उसमें से सोने की टिड़ियां बरसी, चांदी की पत्रियां इनके ऊपर अल्लाह ने बरसाई। सब्र करने वालों को अल्लाह ऐसे ही बदले देता है, और अल्लाह हमें साबिर बना दे। और हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब का जिक्र करो, बड़ी कुव्वत अमल रखने वाले। ये नोट करें, कुव्वत अमल सबसे बड़ी कुव्वत है। बेकार लोग कुछ भी नहीं होते। आप खुद देखें, आप घर में फारिग बैठे हैं, बेकार हैं, ऐसे सुस्ती सुस्ती सुस्ती, इतने में कोई आ जाए या आपको कोई चैलेंज दरपेश हो जाए तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? भाग भाग के काम करते हैं। कुव्वत अमल से ताकत मिलती है। बेकार लोग अपने आप को जाया करते हैं, तो लिहाजा अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी जिंदगी से सुस्ती को निकालें, डेली डेली निकाल दें, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता। अब ये आती कैसे है? ये आगे पता चल रहा है। हमने इनको एक खालिस सिफत की बिना पर बरगजीदा किया था और वो दारे आखरत की याद थी। जो चीज मुझे आपको इस जिंदगी से फायदा उठाने पे माइल करेगी वो आखरत की याद। कैसे लिखिए, अपने हर दिन को ये सोचकर गुजारें कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर आपको मुझे पता तो चल जाए कि ये आज के जो चंद घंटे रह गए बस ये आखिरी घंटे हैं, कैसे गुजारेंगे? पता नहीं क्या क्या रुका होगा। अब देखिए कुछ लोग आखिरी वक्त पे काम करते हैं, लास्ट मोमेंट, फ्लाइट पे जाने से पहले काम कर रहे होते हैं। क्या हम भी अपनी मौत का इस तरह इंतजार कर रहे हैं? मलकुल मौत को देखकर पैकिंग शुरू करेंगे? यकीनन हमारे यहाँ इनका शुमार चुने हुए नेक लोगों में है। और इस्माइल और यसा और जुल्किफिल का जिक्र करो, ये सब नेक लोगों में से थे। आज ऐसे लग रहा है पूरा पारा नबियों की तारीफों में भरा हुआ है। आगे भी आते हैं पारे, लेकिन आज तो एक अजीब ही रंग है। क्या पता चला कि नबूवत का मकसद फिक्र आखरत का लग जाना, लोगों की आखरत की फिक्र और अपनी आखरत का बेहतर होना। फिर इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ अल्लाह सुबहान तआला ने बागे कुछ जन्नत की नेमतों का तस्करा किया है। अपने आप को तसव्वुर की आंख से वहां देखते हुए सुनिएगा। फरमाया, ये एक जिक्र है, अब सुनो, मुत्तकी लोगों के लिए यकीनन बेहतरीन ठिकाना है हमेशा रहने वाली जन्नतें। लफ्ज हमेशा पे गौर करें, जिनके दरवाजे इनके लिए खुले होंगे, इनमें वो तकिया लगाए बैठे होंगे, खूब खूब मेवे और मशरूबात तलब कर रहे होंगे, इनके पास शर्मीली हमसिन यानी हम उम्र बीवियां होंगी। ये वो चीज है जिन्हें हिसाब के दिन अदा करने का तुमसे वादा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह में बगैर हिसाब के जन्नत दे दे।